हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रीति ने इतने समय बाद अपने घर को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, साथ ही दिल में बेचैनी सी महसूस होने लगी। उन बातों को भूलना आसान नहीं था और न ही इस घर का मोह छोड़ना। इतने साल बीते थे उसके इस घर में, बहुत सी अच्छी बुरी यादें जुड़ी थीं यहाँ से, जो अब प्रीति के मन को व्याकुल किए हुए थीं। राजेश के साथ आयुष्मान भी गाड़ी से बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोलकर प्रीति की तरफ अपनी हथेली बढ़ा दी। प्रीति, आराम से बाहर आओ। प्रीति के कानों में आयुष्मान की आवाज़ पड़ी तो उसने निगाहें घुमाकर लाचारगी से उसे देखा, जैसे आंखों से ही मिन्नत कर रही हो कि उसे वहां न लेकर जाए। आयुष्मान सब समझ रहा था। प्रीति की बेचैनी, व्याकुलता, कुछ भी छुपा नहीं था आयुष्मान से। उसने अपनी पलकें झपकाईं और हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, मुझ पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, चलो आओ। प्रीति मायूस हो गई, पर आयुष्मान की बात टाल भी ना सकी। उसने सिर हिला दिया और आयुष्मान की आगे बढ़ी हथेली थामकर गाड़ी से बाहर निकल गई। इतने में राजेश ने उनका सामान निकाल लिया और साथ ही आयुष्मान को प्रीति की इतनी परवाह करते देखकर मुस्कुरा भी दिया। आयुष्मान प्रीति का हाथ थामे राजेश के साथ दरवाजे के चौखट पर पहुंचा। राजेश ने डोरबेल बजाई और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया, मानो सब उसके इंतज़ार में ही बैठे हों। दरवाज़ा खुला तो सामने ही शकुंतला जी, धीरज जी और एक और उम्रदराज औरत खड़ी थीं। वहीं थीं बुआ जी। प्रीति और आयुष्मान की जोड़ी कमाल की थी। दोनों साथ में बिल्कुल मेड ऑफ ईच अदर लगते थे। आयुष्मान को यहाँ आज सब पहली बार ही देख रहे थे। बुआ जी ने दोनों को साथ खड़े देखा तो उनके लबों पर गहरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने तुरंत पीछे की तरफ सिर घुमाते हुए तेज आवाज में कहा, अरे बहू, कहाँ रह गई आरती की थाली लेकर? जल्दी करो, घर की बेटी दामाद पहली बार घर आए हैं, इतनी देर उन्हें चौखट पर खड़ा रखना ठीक नहीं। आई बुआ जी, अंदर से माधुरी की हड़बड़ाती हुई सी आवाज आई। असल में इस घर में बुआ जी का बड़ा मान था। वे धीरज जी से बड़ी थीं और बहुत मानते थे उन्हें। साथ ही जरा सख्त नेचर की थीं वे, इसलिए सभी उनसे थोड़ा डरते भी थे। माधुरी कुछ ही सेकंड बाद हाथ में आरती की थाल पकड़े दौड़ती हुई वहां पहुंची। बुआ जी ने तुरंत ही उसे फटकार लगाई, इतनी देर लगती है एक आरती की थाली लाने में? कब से दोनों यहाँ घर की चौखट पर खड़े हैं? सॉरी बुआ जी, माधुरी ने अपना सिर झुका लिया। बुआ जी ने घूर कर उसे देखा, फिर शकुंतला जी की तरफ निगाहें घुमाते हुए कठोर लहजे में बोली, अब तुम खड़ी क्या हो? अब ये भी हम बताएं तुम्हें कि बेटी दामाद पहली बार घर आए हैं तो आरती उतारकर स्वागत करो उनका। शकुंतला जी ने सिर हिलाया और जल्दी से आरती की थाल लेकर आयुष्मान और प्रीति को तिलक लगाने के बाद उनकी आरती उतारने लगीं। दोनों पर अक्षत फूल छिड़के गए। फिर बुआ जी ने आगे बढ़कर दोनों की बलाएं ले लीं और मुस्कुराकर बोलीं, स्वर्ग में बनी जोड़ी लगती है, नज़र न लगे आप दोनों को किसी की। प्रीति तो एकदम खामोश खड़ी थी। आयुष्मान ने उसका हाथ थामे हुए झुककर बुआ जी के पैर छू लिए तो उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद आयुष्मान ने धीरज जी और शकुंतला जी के पैर छुए तो उन्होंने भी उन दोनों को आशीर्वाद दे दिया। अब ये आशीर्वाद मन से दिया था या दिखावा करने के लिए बस बोल दिया था, ये तो वही जानते थे। माधुरी की बारी आई तो आयुष्मान ने उसे रोष भरी नज़रों से घूरते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। माधुरी खिसिया कर रह गई पर बोली कुछ नहीं, क्योंकि आयुष्मान का गुस्सा पहले ही देख चुकी थी और उसकी निगाहें ही काफ़ी थी उन्हें डराने के लिए। फिर वो अपनी उस हरकत को सबके सामने भी नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मन के भाव छुपाए और आगे बढ़कर प्रीति को अपने सीने से लगाकर बोली, कैसी हो प्रीति, अपने दूसरे पति के साथ खुश तो हो? बातों बातों में उन्होंने प्रीति को उसके अतीत की याद दिला ही दी, या शायद जानबूझकर ऐसे कहा ताकि उसके जख्मों को कुरेद सके, उसे तकलीफ पहुँचा सके। प्रीति तो पलट कर कोई जवाब नहीं दे सकी, पर आयुष्मान चुप न रह सका। उसे प्रीति से किया ये सवाल नाकाबिले बर्दाश्त गुजरा और उसने तुरंत ही माधुरी को रोषपूर्ण नज़रों से घूरते हुए कठोर लहजे में कहा, दूसरे नहीं, पहले, क्योंकि जिस शादी को आप गिन रही हैं वो अमान्य घोषित हो चुकी है, मतलब अब उस शादी का कोई वजूद नहीं। आयुष्मान का प्रीति के लिए यूं स्टैंड लेना राजेश के साथ साथ बुआ जी को भी भा गया। उन्होंने तुरंत ही माधुरी को फटकार लगाई। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, जब मुंह खोलती हो बस जहर उगलती हो। जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आए थे। तुमने आते ही हमारे घर की सारी सुख शांति भंग कर दी। अब हमारी बच्ची की जिंदगी में जहर घोलने और उनकी खुशियों में आग लगाने की कोशिश भी मत करो तुम। चलो परे हटो, हमारी बेटी मिलने दो हमें। उनकी फटकार सुनकर माधुरी की शक्ल देखने लायक थी। उसे बुआ जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब से वो शादी करके इस घर में आई थी हमेशा बुआ जी ने उसको डांटा ही था, जिसकी वजह वो खुद, उसका व्यवहार और उसकी सोच थी। बुआ जी ने माधुरी को प्रीति से दूर कर दिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, कैसी है मेरी बेटी, कितना परेशान थे हम आपके लिए। जब से सब सुना था कितनी चिंता हो रही थी हमें, पर आ ही नहीं पाए आपसे मिलने। आज आपको अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर सुकून आया। प्रीति की आंखों में नमी तैर गई उनकी बातें सुनकर। बुआ जी यहाँ नहीं रहती थीं, प्रीति की शादी में भी वे आ नहीं सकी थीं, जबकि बहुत लाड़ करती थीं वे प्रीति को। उनके खुद के तीन लड़के थे पर बेटी एक भी नहीं, इसलिए प्रीति को खूब चाहती थीं वे। बचपन से प्रीति को उनका खूब प्यार मिला था। हालांकि बुआ जी का आना कम ही हो पाता था, पर वे जब भी आती तो प्रीति के लिए ही आती थीं। महीनों या ये कहें सालों बाद प्रीति उनसे मिल रही थी, इसलिए थोड़ा भावुक हो गई थी। प्रीति ने कुछ बोलना चाहा पर गले से आवाज नहीं निकल सकी। कितने वक्त बाद उनकी ममता उसके हिस्से आई थी, जिसकी शायद बहुत जरूरत थी उसे। बुआ जी को जब एहसास हुआ कि प्रीति रो रही है, तो उन्होंने उसको खुद से दूर किया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, आप रोने क्यों लगी बेटा, सब ठीक तो है आपकी जिंदगी में। प्रीति ने उनके इस सवाल पर सुबकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सब अंदर आए। बुआ जी ने माधुरी को आयुष्मान की आवभगत में लगवा दिया और खुद प्रीति के साथ कमरे में चली गईं। राजेश ने आयुष्मान का सबका परिचय दिया, फिर धीरज जी और शकुंतला जी उससे उसके और उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगे।